ये आकाशवाणी है, अब आप फरहतना से समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पिरिट्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के पीएसएलवी C60 रॉकेट को दो अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया। इससे अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन में सहायता मिलेगी। पीएसएलवी C60 रॉकेट ने SDX-1 यानी चेंजर और XDX-2 यानी टारगेट के नाम के दो उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ये दोनों उपग्रह अगले 10 दिनों में अंतरिक्ष में डॉकिंग करने के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। स्पेसएक्स मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता की उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। ये मिशन चंद्र अभियान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि दोनों उपग्रहों के पैनल सफलतापूर्वक तैनात कर दिए गए हैं और ये दोनों उपग्रह 20 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और फिर डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जब दोनों उपग्रह करीब आएंगे और अंतरिक्ष में एक साथ डॉक करेंगे। रेलवे प्रयागराज महाकुंभ के लिए 3,000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। इनमें 1,800 छोटी दूरी और 700 लंबी दूरी के लिए रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। 560 रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए गए रिंग रेल रोड पर चलेंगी। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। रेल मंत्रालय ने बताया है कि मेला क्षेत्र के अलावा प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशनों पर 560 स्थानों पर टिकट उपलब्ध कराई जाएंगी। महाकुंभ के लिए रेलवे ने 15 दिन पहले रेलवे टिकट जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा आज से बढ़ाकर अगले वर्ष 31 जनवरी तक कर दी है। इससे करदाताओं को योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय लगेगा। बजट में घोषित योजना का उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। इससे करदाताओं को एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपनी बकाया दर देनदारियों का निपटान करने में मदद मिलेगी। सरकार ने डीजी यात्रा ऐप के डेटा का उपयोग कर चोरी को पकड़ने के लिए किए जाने की मीडिया में आ रही खबरों और रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि डीजी यात्रा पर मौजूद यात्रियों का आंकड़ा कर अधिकारियों के साथ साझा नहीं किया जाता है। ये ऐप केवल घरेलू यात्रियों के लिए है और इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नहीं होता है। उधर आयकर विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में 30 जुलाई को हुए भीषण भूस्खलन के व्यापक असर को देखते हुए इसे अत्यंत गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को सूचित किया है कि राज्य आपदा प्रबंधन कोष से दी गई प्रारंभिक सहायता के अलावा अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल के मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त मदद दी जाएगी। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र के निर्णय का स्वागत किया है। बेंगलुरु के विशेष न्यायालय ने एक बांग्लादेशी आतंकवादी को 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी है। डकैती, षड्यंत्र और धन जमा करने के साथ साथ हथियारों की खरीद के मामलों में दोषी जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर पर 57,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। वे बांग्लादेश में सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद भागकर भारत आ गया था। भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आज नेपाल में रूपंदेही के सलझंडी में शुरू होगा। बटालियन स्तर का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जंगल में युद्ध, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद से मुकाबले, आपदा प्रबंधन और राहत जुटाने में मानवीय सहायता पर केंद्रित है। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण में नेपाली सेना की श्रीजंग बटालियन और भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल शामिल होगी। उत्तर भारत में शीतलहर जारी रहने से कई राज्यों के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर जारी रहेगी। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कल तक अधिक ठंड जारी रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में भी शीतलहर जारी है। दिल्ली पुलिस ने आज नए साल के जश्न को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रमुख बाजारों में CCTV कैमरे और पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के निकास द्वार भी आज रात 9 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। न्यूयॉर्क में फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में वैशाली रमेश बाबू ने महिला वर्ग के नॉकआउट चरण में पहुंच गई हैं। वैशाली 11 दौर के बाद 9.5 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहीं। वह महिला और ओपन वर्ग में अगले दौर में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। हाल में दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली ग्रैंड मास्टर हम्पी कुनेरू 9वें स्थान पर रहीं और अगले चरण वे नहीं पहुंच सकी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।